गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। भक्तो, सुपर कैसेट टी सीरीज कंपनी दिल्ली के माध्यम से मैं आप लोगों को शिष्य परीक्षा नामक प्रसंग को सुनाने जा रहा हूं। इस प्रसंग को सुनकर आपको आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के चरणों में दो लाइनें और तत्पश्चात शिष्य परीक्षा कथा प्रसंग। भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। सताए जाते हैं हर दिन दुखी नजरों से प्रभु, हर दिन दुखी नजरों से प्रभु आंसू से बहाए जाते हैं। शरी के आंसू प्रभु मिट्टी में मिलाए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर वाटिका में विद्यमान है। आज क्वार मास की पूर्णमासी है। यहां पर तुलसी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, उसकी व्याख्या ध्यान दें भक्त लोग। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, मेन प्रसून चले दोनों भाई। चौपाई को विशेष रूप से ध्यान दे भैया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कुछ सवाल किए हैं। कहने लगी, महाराज भगवान राम ने समय क्या जाना? और दूसरा सवाल है कि फूल लेने के लिए दोनों भाई ही क्यों गए? भोले बाबा कहने लगे, देवी भगवान राम ने बिना गुरुदेव की आज्ञा के कोई कार्य नहीं किया। जैसे प्रमाण, निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदन कीना, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दोनों भाई। मिले हैं जहां पर भगवान ने बगैर गुरु की आज्ञा के कोई कार्य नहीं किया। भवानी कहने लगी, महाराज फिर हमारे सवाल का जवाब। भगवान शंकर कहने लगे, देवी भगवान ने समय क्या जाना? सोचते हैं प्रभु वाटिका में सीता का दर्शन होगा, बिना सीता के धनुष तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए आदि शक्ति और आदि पुरुष का होना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आदि पुरुष और आदि शक्ति का मिलन आवश्यक है। जिस प्रकार से संसार की सृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी ने 14 लड़के बना डाले लेकिन सृष्टि नहीं चली। अंत में उन्होंने एक स्त्री और एक पुरुष बनाए जिससे संसार की रचना हुई। कहने का मतलब, लोग कहते हैं संसार माने, कोई कहता दुनिया और दुनिया माने संसार, नहीं ऐसा नहीं है। संसार के मतलब है प्रेम, स्त्री और पुरुष के प्रेम का परिणाम है ये संसार, ये दुनिया। यदि स्त्री और पुरुष प्रेम न करता तो ये संसार न चलता। कहने का मतलब ये, बगैर आदिशक्ति और आदि पुरुष के मिले संसार का भार हरण नहीं होगा। बिना सीता की ताकत के भगवान राम से धनुष नहीं टूटेगा। रामायण में तुलसी महाराज ने वर्णन भी किया है, राम से धनुष का कोई संबंध नहीं, राम बरी, राम से कोई संबंध नहीं। फिर भाई धनुष किसने तोड़ा? तो लिखा आगे, राम बरी सिय भंजे उचापा, राम से कोई मतलब नहीं, धनुष किसने तोड़ा? सीता ने। भगवान शंकर कहने लगे, देवी यही भगवान राम ने विचार किया। जिज्ञासा उर रही समाई, सौर रही समाई, समय जानी दूर आय सुपाई। आता है सवाल नंबर दो, भगवान राम अकेले क्यों नहीं गए? पार्वती जी ने भगवान शंकर से सवाल किया कि महाराज पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। अरे भाई, पूजा के लिए दो चार छह दस बीस फूल चाहिए थे, ऐसा तो नहीं था। पूजा के लिए दो चार छह दस बीस फूल चाहिए, लड़ी दो लड़ी तो चाहिए थे। यहाँ पर क्यों लिखा गया कि पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। भगवान शंकर कहने लगे, देवी विचार कर रहे हैं भगवान राम कि अगर मैं आज अकेले जाता हूं, लिखा है 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी महाराज ने लिखा है, क्या 18 पुराणों के रचयिता व्यास ने लिखा है कि मनुष्य को कभी भी अकेले एकांत में किसके साथ? माता सुता बहिनी के तीरा, अरे माता सुता बहिनी के तीरा, कब हूं ना बैठे पुरुष गंभीरा। व्यास जी महाराज ने लिखा है कि मनुष्य को अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ यदि ये जवान हैं तो कभी भी इनके साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए। भगवान राम विचार कर रहे हैं, मैं बगिया में जाऊंगा अकेले, उधर से सखियां होंगी तमाम, और कैसी सखियां? आहा, सीता के विषय में लिखा है स्वामी जी ने, सीता कैसी है? सुंदर नहीं है। सुंदरता कहां सुंदर करई, मणिग्रह दीप सिखा जनु बरई। अरे जो सुंदरता को भी सुंदर करती है वो सीता है। और भगवान राम के विषय में लिखा है, भगवान राम के विषय में क्या लिखा है? कंगनवा हो राम, कगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे कगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे। बड़ा नीक लागे हरे, बड़ा नीक लागे कगनवा, कगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे कगनवा। माथे पे जिनके तिलक विराजत, माथे पे जिनके गले बीच बैजंती माला सुहावत, गले बीच बैजंती अरे अखियन में कजरा, अखियन में कजरा हो, बड़ा नीक लागे कंगनवा, कंगनवा हो राम, बड़ा नीक लागे कंगनवा। अरे आखियाँ गजरवा कंगनवा ओ राम बड़ा नीक लागे कंगनवा अद्वितीय सुंदर है, उधर से सीता भी सुंदर है। प्रभु ने विचार किया, व्यास जी महाराज ने लिखा है, माता सुता बहिनी के तीरा और कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा। क्यों? इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? लिखा है, यही ते होती बुद्धि बर माता, यही ते होती बुद्धि बर नासा, अरे यही ते होती बुद्धि बर नासा, करियो ना कछु, अरे करियो ना कछु कम विशासा। इस समय की है, जरा विचार करें भैया लोग, बड़े प्रेम के साथ में सुने। एक समय की बात है, व्यास जी महाराज नैमि शरण में बैठे थे अपने आश्रम पर, नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना चल रही थी। व्यास जी महाराज के सारे शिष्य उनके चारों तरफ बैठे हैं। प्रकृति छटायुत परम सुहावन और तट गोमती सुआश्रम पावन, तो तहां व्यास मुनि परम सुजाना और बैठे लिखत नीति विधि नाना। व्यास जी महाराज गोमती नदी के किनारे बड़ा सुंदर अच्छी अच्छी नीति की बातें लिख रहे थे। सारे शिष्य लोग उनकी रचना को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये लिखा कि माता सुता बहन के तीरा, जवान माँ हो, जवान बहन हो, जवान बेटी हो। श्रोता भैया ध्यान दें, कितने मतलब की बात 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी महाराज के द्वारा आज एक शिष्य की परीक्षा होने जा रही है। आप लोग भी सुने, और कथा को सुने ही नहीं, आप लोगों ने तमाम कैसेटों के माध्यम से कथाओं को सुना होगा। जिन भैया लोगों ने मेरी कैसेट को सुना है, आपको अवश्य ही एक न एक नई बात प्राप्त हुई होगी। आज आप अपने मतलब की बात को ग्रहण करें, इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुने। जवान लड़की हो, जवान बहन हो, जवान माँ हो, कभी भी विचारवान पुरुष को एकांत अकेले में इनके पास बैठना नहीं चाहिए। जैसे व्यास जी महाराज ने लिखा कि माता सुता बहिन के तीरा कबहुन बैठई पुरुष गंभीरा, यही ते होती बुद्धि वर नासा, करियो ना कछु कम विश्वासा। बहुत से शिष्य लोग बैठे थे, उनमें से एक शिष्य महाराज खड़े हो गए। नाम जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, अरे जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, शंका मम गुरुदेव कृपाला, के एक शिष्य थे जिनका नाम था जैमिन। खड़े हो गए और कहने लगे, गुरुदेव एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा है गुरुदेव माता सुता बहिनी को त्यागे। महाराज आपने लिखा है कि आदमी को माँ के पास नहीं बैठना चाहिए, बहन के पास नहीं बैठना चाहिए, लड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। महाराज मेरी बात का जवाब दे दें गुरुदेव, आदमी माँ के पास न बैठे, लड़की के पास न बैठे, बहन के पास न बैठे। एक कहावत कहते हैं देहाती भाषा में कि जब इनके पास न बैठे तो कबाड़ में घुस जाए। माता सुता बहिनी को त्यागे, नर बैठई तब कही के आगे। गुरुदेव, आदमी माँ के पास न बैठे, लड़की के पास न बैठे, बहन के पास न बैठे तो कहाँ चला जाए। गुरुदेव, यहाँ न उचित मोहे लगे ओ गुसाई, यहाँ न उचित मोहे लगे ओ गुसाई, लिखुआ पर आगे हूँ मिटाई। ठीक नहीं लगा, या तो आप इसको मिटा दीजिए अथवा इसकी जगह पर दूसरा मंत्र लिखिए। जैसे ही शिष्य की बात को सुना, गुरुदेव को मुस्कुराहट आ गई। गुरुदेव को मुस्कुराहट आ गई, कहने लगे बेटा, व्यासन बोले सुनी असबानी। बेटे की बात को सुना, अपने शिष्य की बात को सुना, व्यास जी महाराज कुछ न बोल सके। व्यासन बोले सुनी असबानी, खींची रेख हृदय सुख मानी। व्यासन बोले सुनी असबानी, खींची रेख सुखमानी। दीन है निकारी ठीक जब नाही, दीन है निकारी ठीक जब नाही। अपने शिष्य की इस बात को सुना, मन में मुस्कराए। एक बच्चे ने मेरे सामने मेरी बात को काट दिया। जैमिनी महाराज कहने लगे, या तो गुरुदेव इसको निकाल दीजिए अथवा इसको काट दीजिए। मुस्करा के रह गए व्यास जी महाराज। कहने लगे, अच्छा बेटा, तुमने जैसे कहा वैसे ही होगा, तुमने जो कहा वही होगा। बेटा, दिन निकारी ठीक जब नाही, दिन निकारी ठीक जब नाही। जैमिनी फूली आए, जैमिनी फूली गए मन माही।
जैमिनी फूली गए मन माही, जैमिनी फूली।
ही गुरुदेव ने कहा मैंने निकाल दिया, जैमिनी फूल के मोटे बन गए, कहने लगे वाह आज मैंने गुरुदेव की बात को पकड़ पाया। लेकिन बंधु यहां तो परीक्षा होने जा रही है। व्यास जी महाराज ने फौरन अपनी किताब को बंद कर दिया, वहीं पर कलम को रख दिया, किताब को बंद कर दिया। चाहे कोई कवि हो, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई विद्वान हो, अगर समस्या बीच में आ गई, जब तक उस समस्या का समाधान लेखक कवि या विद्वान न कर दे तब तक उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर उसने समस्या को बीच में छोड़ दिया तो वो बात सही नहीं। इसलिए व्यास जी महाराज के मार्ग में अब समाधान है, पहले इस बात को सिद्ध करेंगे तब आगे रचना बढ़ेगी। इसलिए पुस्तक को बंद कर दिया और पुस्तक को बंद करके आराम से बैठ गए। जैसे ही गुरुदेव ने अपनी रचना को बंद किया वैसे शिष्य लोग भी उठ करके अपने अपने स्थान को चले गए। बड़ा विचित्र समय आया बंधु, बड़ा विचित्र समय। समय बीतता गया, कितना पावन समय है ये। आज सारे शिष्य लोग अपनी अपनी कुटिया में बैठे हैं। तब तक बीती गयो कछु काला, अरे तब तक बीती गयो कछु काला, तब तक बीती गयो कछु काला, आयो चातुर माल रसाला, बंद कर दिया। समय आया, जब समय आया कौन सा समय, सावन कृष्ण पाठ अंधियारी, अरे सावन कृष्ण पाठ अंधियारी, सावन कृष्ण पाठ अंधियारी, चहुदी सीता मिनी दम गई भारी, सावन का महीना अंधेरी रात। विशेषता इस बात की है बंधु, कितना विचित्र समय इस कथा का आया कि सावन का महीना भी है और अंधेरी रात भी है। कितना उपयुक्त समय बैठा, हर वस्तु के लिए हर समय उपयुक्त नहीं बैठता, परंतु इस कथा को देखें कितना उपयुक्त समय बैठा है। इसके कहे जाने का समय सावन और रात्रि भी अंधेरी। सावन का महीना है, चारों तरफ से अंधकार में रात्रि, ऊपर से कभी कभी बिजली चमक जाती है। साथ ही साथ सावन का महीना बहाई मनोहर प्रभृति समीरा, बहाई मनोहर प्रभृति समीरा, बरसई मेघ, अरे बरसई मेघ सुनी रमल नीरा, त्रिविधि समीरा, कभी पूर्वैया कभी उत्तरहरी कभी दक्षिणहरी, आह। और ये हवाएं कितनी विचित्र लगती हैं। सावन का महीना कैसे आपको दिखेगा, कैसे आप समझेंगे कि सावन का महीना है। ध्यान दें श्रोता बंधु, घनगर जई सुनी कल कल मोरा, घर जाई सुनी कल कल मोरा नाच ही उरे आनंद न तोरा आकाश में बादल गरजते हैं, बादलों के गरजने से मोर आवाज करते हैं। बंधु, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि किसान अंधा होता है। बड़ा ही विचित्र एक प्रसंग है, मोर के गरजने की आवाज आ गई। एक बार इंद्र ने सूखा डालने का विचार किया और मेघों से कहा गया कि तुम बरसात नहीं करोगे। मेघों ने कहा, भाई हम नहीं बरसेंगे, एक शर्त है, अगर मोर गरजेगा तो हम बरसेंगे, मोर नहीं गरजेगा तो हम, मोर नहीं बोलेगा तो हम नहीं बरसेंगे। अब भाई भगवान पहुंचे मोर के पास, मोर से कहा, भाई देखो इस वर्ष तुम बोलोगे नहीं क्योंकि हमको सूखा डालना है। मोर ने कहा, हम कतई नहीं बोलेंगे महाराज, एक शर्त है, अगर मेढक बोलेगा तब तो हम बोलेंगे, और मेढक अगर नहीं बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे। मेढक से कहा गया, भैया तुम भी मत बोलना क्योंकि तुम बोलोगे तो मोर बोलेंगे, और मोर बोलेंगे तो पानी बरसेगा, और मैं पानी बरसाना नहीं चाहता हूं इस वर्ष। मेढक ने कहा, हमारी का परी जो हम बोली। बंधु, अषाढ़ का महीना आया, किसान खेत जोत डाला, पानी की बूंद नहीं, बड़े बड़े ढीले पड़े हैं खेत में, लेकिन उसने सोचा लाओ धान बो दें, सूखे में ही धान बो दें, कभी न कभी तो बरसेगा ही। किसान ने धान बोया, एक ढीले के नीचे एक मेंढक बैठा था। किसान ने जो धान फेंका तो वो धान मेंढक की आंख में जाकर के गिर गया। अब मेंढक की आंख में जब धान गिर गया तो रात में मेंढक अपनी पीड़ा में बोल पड़ा। जब मेंढक बोल पड़ा तो मोर भी बोले, मोर भी बोले तो बादल छा गए और घनघोर वर्षा हो गई। इसीलिए जब भगवान ने पूछा बादलों से तुम क्यों बरसे, मेघ ने कहा, भैया हमने कहा था मोर बोलेगा तो हम जरूर बरसेंगे। भगवान ने मोर से पूछा, तुम क्यों बोले, मोर ने कहा, भाई हमने कहा था अगर मेंढक बोलेगा तो हम जरूर बोलेंगे। मेंढक से पूछा, तुम क्यों बोले, मेंढक ने कहा, महाराज बोले कहां, हम किसान अंधा था, उसने हमारी आंख में धान डाल दिया तो मैं पीड़ा में बोल पड़ा। कहने का तात्पर्य है बंधु, जब मोर मेंढक बोलता है तो मोर बोलते हैं, और मोर बोलते हैं तो आकाश के बादल जब गरजते हैं तो मोर अवश्य ही बोलते हैं। आकाश की आवाज को सुनकर के जब मोर बोले, ये चौमास की स्थिति है। मेघों का गर्जना, मोर का बोलना, मेढक का टर्र टर्र दादुर उच्चारे, झनर झनर झींगुर झनकारे, घन गरजे सुनी कल कल मोरा, नाचे उर आनंद न थोरा। ये सावन की नहीं बल्कि बरसात के महीनों की पहचान है। बंधु और समझे, अनुपम चरित छटा चारानी, अनुपम चरित छटा चारानी, ब्रच्छन लपिटी, अरे ब्रच्छन लपिटी लता लहरानी, महीने में जैमिन ऋषि जंगल में अपनी कुटिया में बैठे हैं। जैमिन ऋषि निज कुटिया माही, जैमिन ऋषि निज कुटिया माही, करहि भजन प्रभु मन हार शाही जय मीन ऋषि नींद कुटिया माही खड़ी भीग रही है। आह, बड़ी ही सुंदर अद्वितीय सुंदरी एक वृक्ष के नीचे खड़ी भीग रही है। स्थिति क्या है उसकी? चपटे वस्त्र भीगी तन माही, इतने बारीक कपड़ा पहने हैं कि पानी बरसने से उसके सारे कपड़े शरीर में चिपट गए। चपटे वस्त्र भीगी तन माही यही ते बाहा सा कुचाई मन माही। लड़की के कपड़े शरीर से चिपट गए हैं, जाड़े के मारे कांप रही है। अगर उसको देखो तो ऐसा लगता है कि वो किसी की शरण चाहती है, लेकिन किंतु न बह कछ मुख से बोले, असमंजस की गांठन खोले, मृदुल भाव लखी सुंदर अंगा, मृदुल भाव लखी अरे मृदुल भाव लखी सुंदर अंगा, तपस्विनी करई तपस्विनी कराई तपस्या भंगा। इतनी सुंदर है कि उसको जो देख लेगा वही मोहित हो जाएगा। लेकिन बाबा जैमिनी, वारे बाबा, पर जैमिन ऋषि सुचि व्रत धारी, माता सम समुझाई पर नारी। लेकिन कैसे हैं बाबा? तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी, तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी अरे तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी और रहे अड़ी गया दास्य निहारी। उस लड़की की ओर देख रहे, लेकिन कैसे हैं बाबा? काम सतावई, काम सतावई उन्हीं न कैसे, ऊसर बीज जमैना जैसे, जैसे ऊसर खेत में बीज डाल दे जैसे ना जमत, ऐसे बाबा लड़की को रूप चुआई और बाबा बैठे देखें, एक और कतई उनका मन चलायमान नहीं हुआ। लेकिन वो लड़की बाबा ने देखी कैसे, अंधेरी रात थी और वो तो पेड़ के नीचे बाबा कुटिया में, तो बाबा ने देखा कैसे? दामिनी दम की प्रकाश दिखावई, दामिनी दम की प्रकाश दिखावई, दामिनी दम की प्रकाश दिखावई, जही से सिगरो वैसे लखावई, जही से सिगरो जैसे, बिजली चमकती है। बाबा की दृष्टि पड़ गई, एक बिजली आकाश में चमकी और दूसरी बिजली पेड़ के नीचे। कैसी है उसकी निगाह, जैसे पैनी कटार, कमला नन मृग सावक नैनी। बाबा की तरफ वो अपने नेत्रों की कटार चला रही, लेकिन बाबा काम सतावे उन्हें कैसे, ऊसर बीज जमैना जैसे, वो अपने नेत्रों की कटार बाबा पर चला रही है, लेकिन बाबा मुनि कछु मरम जानी नहीं पाए, कछु मरम जानी नहीं पाए, सरल भाव उठी द्वार ही आए, कुछ नहीं जान पाए, बाहर निकल के आए, लड़की के पास में पहुंचे और क्या बोले, और उससे बोले अशबानी, और उससे बोले अशबानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी, ठंडी वायु घनी आंधी आई, सुनहु ध्यान धरी गजर, सुनहु ध्यान धरी बात हमारी, बाबा कुटिया के बाहर निकले आए, कहने लगे बेटी विकट बिजन नहीं संग सहेली, केही कारण तुम फिरहु अकेली, कुटिया भीतर आई पधारो, कुटिया भीतर आई पधारो, भीगे वस्त्रन आप उतारो, भीगे वस्त्रन आप, कुटिया में आ जाओ, लो अपने भीगे कपड़ा उतार डालो, हमारे सूखे कपड़ा पहन लो। बंधु लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। नारी नाही दीन हो कछ उत्तर, और आई तुरत कुटी के भीतर। जब कुटिया के भीतर आई, बाबा ने अपने कपड़े दे दिए। जब अपने कपड़े दिए, लड़की ने अपने भीगे कपड़ों को निकाल डाला, बाबा के दिए हुए कपड़े धारण कर लिए। भीगे वस्त्र बदली सब डारे, भीगे वस्त्र बदली सब डारे, झटपट कुंचित केश संहारे। लड़की को एक चटाई दी और कहा लो इसे तुम बिछा लो। बेटी करी विश्राम खोई सम भारी, करी विश्राम खोई सम भारी, तब निजे हाल कहू महादारी। चटाई दे दी, लड़की ने कुटिया में चटाई बिछा ली। बंधु अब चटाई भर की कुटिया में जगह थी, लड़की लड़ गई, बाबा कहां जाए। बंधु तो थोड़ी सी जगह चटाई पर रह गई थी, वो बाबा ने कवर की। लेट गए दो शांति अशंका, ऐसे बने 36 के अंका। जैसे 36 का अंक, एक तरफ लड़की का मुंह, एक तरफ बाबा का। लेकिन बंधु आप लोगों ने देखा होगा, भैया सारी रात एक करवट लेटना बड़ा मुश्किल। हम तो ना लेट पाओ भैया, दूसरे के हम ना ही कहत। एक करवट से लेटे ना कि पेट फूलो ना। बाबा थोड़ी देर तक तो लेटे रहे, देर भई कछु बदले करवट, देर भई कछु ऐसे बने, ऐसे बने कि जैसे 63। अब तो दोनों लोग ऐसे बन गए जैसे 63। श्वास में श्वास जब है टकरानी, उठी बैठे तब ऋषिवर ज्ञानी। जरा विचार करे बंधु, जिन बाबा ने बिटिया कह करके अंदर लाए, माता कह करके लिटार दिया, अब वो क्या कह रहे हैं। मम इच्छा उर करऊ विवाह, मम इच्छा उर करऊ विवाह, पूरा बहु सुंदरी मोर उचाह। आज बाबा ने उसी लड़की से कहा कि तुम हमारे से विवाह कर लो। देखो बंधु कामनाओं की भावना। लड़की मुस्कराई, कहने लगी बाबा हमारे उर अतिशय अभिलाषा और प्रथम तुमने काहे न भाखा। हमारे मन मत पहले यही, तुमने पहले क्यों नहीं कह दिया? अब तक तो ब्याह हो गया, सब हो जातो, लेकिन बाबा एक शर्त है। हमारे समाज में शादी तब मानी जाती है जब सात भामरे पड़ जाए। बाबा बड़े दुखी सोचने लगे, आधी रात होने जा रही है, अब यहां कहां से नाई आएंगे, कहां से पंडित आएंगे, कैसे भामर पड़ेगी। लड़की मुस्कराई, मंद मंद मुस्कानी भामा, मंद मंद मुस्कानी भामा, ऋषि से बैन कहे अभिरामा। की जरूरत नहीं, कुटिया खंभु मानी सहकारी और भामरी सातले हु तुम डारी। कहा कुटिया को खंभ बना लो और इसी के साथ भवन। बाबा ने कहा इसमें कौन सी परेशानी, तो तुरत ऋषि आगे चली देऊ और मुदित नारी पाछे लगी लेऊ। कदम दो कदम लड़की चली मसमसा के बैठ गई। हाय बाबा हम तो मरी गए। बाबा ने कहा का आफत आई गई। लड़की कहने लगी महाराज हमारे पैर में कांटा लग गया। बाबा ने कहा अब कैसे चलोगी तुम। लड़की कहने वह बोली लैया उ सवारी और तब है भामरी परई हमारी। लड़की ने कहा तो सवारी ले। बाबा और परेशान कि आधी रात में जंगल में सवारी कहां, कौन शहर हो तो सवारियों मिल जाती। बाबा रोने लगे, लड़की मुस्कराई, लड़की मुस्कराई, कहने लगी बाबा एक तरीका और है। कहा बस कही डालो जल्दी। कहने लगी सुनो, बनऊ आस तुम हम अस बारा, बनऊ आस तुम हम अस बारा, अहिमा तनिकन, अहिमा तनिकन लाग हुबारा। बाबा एकदम घुटुअन पड़ गए। मेरे बंधु घुटुओं पड़ गए। लड़की ने आराम से बैठ ली। बने ऋषि का मांध तुरंगा और चढ़ी नारी निज चंचल अंगा, हाथ ली न चाबुक बिकराला, मारी उधेली मुनि की खाला। मारू खाई मुनि कछून बोले, कुटिया चहु दिशी घूमई डोले। सोचे शायद सबकी भी हम ऐसे मारू होते हो। बाबा मार खाए मगन, सोचने लगे हुई जान दो मारू, घरवाली तो मन की मिल रही, मार हो जाते हुए जान दो। सातवां चक्कर हुआ बंधुओं, लड़की उतर पड़ी। बाबा ने उठ करके देखा, उठे घूमी जो दृश्य निहारा, तो चकित भये जयमिनी अपारा। क्या देखा, दंड का मंडल कर सुचि केसा, प्यास देव ठाणे मुनि देशा। गुरु भगवान को खड़े देखा, हाय पैरों पर गिर पड़े। गुरु पद लपिटी मुनि तत्काला, क्षमा मांगी बहु विनय विशाला। कहने लगे गुरुदेव हम जो कहा सुचित नहीं दीजे, जो ए लिखो सो ए लिख दीजे। क्या माता सुता बहिन के तीरा, कब हुन बैठई पुरुष गंभीरा। भगवान राम सोच रहे बंधु, आई अपनी बात पर। भगवान राम सोच रहे हैं कि उतते हो अनेकन बामा, औ साई दिजी तिले मोहे कामा। और एक संग अगर दुई होई, एक संग अगर दुई होई, एक संग अगर दुई होई, काम भाव कदापि नाय होई। प्रसून चले दोनों भाई, एक बार प्रेम सुनो श्यावर रामचंद्र की जय।